ಗೋಪೀಶನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ದಾರಿ ಗೋಪೀಶನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ದಾರಿ ಗೋಪೀಶನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ದಾರಿ ಗೋಪೀಶನ ವಲ್ಲಭ ಯಶೋದಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಾಚಾರಿ ಯಮುನಾ Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
ಮಾಧವ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧಾ
Krishna. His divine is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Ekadashi Maha Mahotsav ki. Yadai Gaur Premande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurammilitamena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Ena Bhutale Swayam Rupa Tadameham Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandhu Javarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Takta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Besha Kripa Sindhu Behevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktivedanta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. तो आज बहुत विशेष दिन है वैष्णव के लिए एकादशी तिथि है तो आज की जो एकादशी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार रूप से तो एकादशी एकादशी व्रतम नाम सर्व काम फल प्रदम सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में एकादशी की महिमा का वर्णन करते हैं कि ये जो व्रत है एकादशी का ये वैष्णव के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो व्रत है कई व्रतों में एकादशी व्रतम नाम सर्व काम फल प्रदम तो एकादशी को महा व्रत कहा जाता है सारे व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत कोई है तो वो एकादशी का है और सर्व काम फल प्रदम सारे जो काम है कामना मतलब इच्छाएं उनकी पूर्ति करने वाला है कर्तव्यम सर्वदा विप्रे सनातन गोस्वामी ने कहा हर एक जो साधक है भगवत भजन में लगा है उसका ये ड्यूटी है उसका ये कर्तव्य है कि एकादशी को पालन करे क्यों विष्णु प्रेणम कारणम यदि वो अपना प्रेम अपना प्रीति अपना अफेक्शन आसक्ति स्नेह भगवान कृष्ण से या विष्णु से बढ़ाना चाहता है तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हर महीने में एकादशी मंत्र एकादश का मतलब ये है 11 ना तो एकादशी हमें महीने में दो बार आती है तो सारे पुराण में यदि एकादशी का वर्णन पढ़ते हैं तो जनरली भौतिक लाभों का बहुत अधिक वर्णन किया है कि आप एकादशी का व्रत पालन करोगे तो आपको पुत्र नहीं है तो पुत्र की प्राप्ति होगी ये भौतिक सुविधा मिलेगी वो कामनाएं पूर्ति होगी लेकिन वो वैष्णव के लिए नहीं है वैष्णव के लिए क्या है एकादशी हरि वासर एकादशी का दूसरा नाम है हरि वासर हरि का वास जिसमें होता है भौतिकतावादी लोग संपन्नता अपने जीवन में लाने के लिए भौतिक संपन्नता इसलिए उसका पालन करते हैं लेकिन जो वैष्णव गण है विष्णु प्रेणम कारणम सनातन गोस्वामी ने कहा कि विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए या कृष्ण के प्रति जो प्रीति है हाँ, उसको बढ़ाने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया है। रूप गोस्वामी भी कहते हैं जो 64 भक्ति के अंग है उसमें एक अंग यह भी है एकादशी व्रत का पालन करना। श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंध में वो लिखते हैं, टू ऑब्जर्व एकादशी व्रत मीन्स टू प्लीज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, दो इंटरेस्टेड इन एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मस्ट ऑब्जर्व एकादशी रेगुलरली। प्रभुपाद ने कहा कि जो वास्तव में कृष्ण भावना में उन्नति करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, मस्ट, मतलब मस्ट को क्या कहेंगे, अवश्य है, आवश्यक है उसको एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि ये जो एकादशी का कोई व्यक्ति साधक पालन नहीं करता तो वो व्यक्ति अपना जीवन नष्ट कर रहा है। जानिया सुनिया विष खाइनो, जानबूझकर वो विष का पान कर रहा है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि एकादशी का मतलब ही है होल डे ड्रिंक द होली नेम ऑफ कृष्णा, ऐसा वो कहा करते थे। एकादशी का जब भी उच्चारण करते थे वो कहते थे एकादशी का मतलब ही है कि पूरे दिन कृष्ण नाम को क्या करो, पियो, कृष्ण नाम को पियो पूरे दिन। तो इस प्रकार से हमें एकादशी व्रत को गंभीरता से लेना चाहिए जिसको। और एकादशी मतलब क्या है जन सामान्य लोगों में है, उपवास करना, बस व्रत रख रहे जी हम, कुछ खाएंगे नहीं, ग्रेन वगैरह, तो उतना ही काफी नहीं है। उपवास का मतलब है उप मीन्स निकट और वास मतलब वास करना। तो ये जो उपवास है एकादशी के दिन वो हमें क्या करता है, कृष्ण के निकटतम निवास करने का मौका प्रदान करता है। तो भौतिकतावादी लोग भगवान के निकट नहीं रहना चाहते, हम भगवान से दूर ही रहना चाहते हैं। तो भगवान के निकट निवास करने का मतलब है कि एकादशी का ये जो उपवास है, फास्टिंग है, हमें वो मौका प्रदान करता है जिसके द्वारा हम भगवान के धाम में उनके साथ निवास कर सकते हैं, सामीप्य, अलग अलग जो मुक्तियां हैं। इसलिए भगवान ने कहा न तद भासयते सूर्यो, कौन से स्थान में आप रह पाओगे मेरे साथ जहां सूर्य चंद्रमा आदि नहीं होता। तो इंटरनली हमें यदि कृष्ण के साथ निवास करना चाहते हैं तो ये बहुत सरल उपाय है कि व्यक्ति को एकादशी का पालन करना चाहिए। तो इसलिए आज का जो एकादशी है इसका नाम है मोक्षदा एकादशी, मोक्षदा एकादशी, मोक्षदा मीन्स देने वाले। और ये विशेष रूप से आज का जो एकादशी है श्री संप्रदाय में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। ये प्रोमिनेंट उनके साल का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल है वैकुंठ एकादशी। आप श्रीरंगम में गए हैं या आप जाएंगे तो वहां आज के दिन हजारों लोग भगवान का जो नॉर्दर्न गेट है, उत्तरी जो दरवाजा है भगवान के मंदिर का, वहां से प्रवेश करने के लिए दक्षिण भारत से या पूरे विश्व से हजारों हजारों लोग आते हैं उत्तर दिशा से प्रवेश करने के लिए दरवाजे से और लॉर्ड रंगनाथ का दर्शन करने के लिए। तो इसलिए इस एकादशी का दूसरा नाम है वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। या इस फेस्टिवल को मोक्षोत्सवम, श्री संप्रदाय के वैष्णव इसको मोक्ष उत्सव भी कहते हैं। तो ये जो मोक्षदा एकादशी है तो ये जो सारी एकादशियां दो पक्षों में आती है ना, कृष्ण पक्ष और दूसरा है शुक्ल पक्ष। तो ये मोक्षदा एकादशी कौन से पक्ष में आई है, शुक्ल या कृष्ण पक्ष, दोनों में से होगा। और ये मार्गशीर्ष महीना है, भगवान गीता में कहते हैं मासाना मार्गशीर्ष। तो लेकिन वैष्णव ये जो 12 महीने हैं वैष्णव के द्वारा इस 12 महीनों को नाम दिए गए हैं कृष्ण नाम। तो इस महीने का नाम वैष्णव के अनुसार क्या है, केशव मास। केशव मास है जिसमें ये विशेष एकादशी आती है। तो पद्म पुराण में इस एकादशी का महात्म्य का वर्णन आता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एकादशी का पालन नहीं कर पाया अपने शारीरिक अस्वस्थता के कारण, तो उस व्यक्ति यदि केवल पद्म पुराण के उन महात्म्यों को पढ़ता है, हर एकादशी जब आता है उस पर्टिकुलर एकादशी का महात्म्य पढ़ता है और सारे एकादशियों का नाम उच्चारण करता है, तो कृष्ण उसको एकादशी व्रत का सारा जो फल है वो प्रदान करते हैं केवल उच्चारण करने मात्र से। हाँ, क्योंकि एकादशी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय दिन है, इसलिए भक्तिनो ठाकुर ने कहा माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करे। एकादशी का दूसरा नाम क्या है, माधव तिथि। ये माधव की कृष्ण की तिथि है, माधव तिथि भक्ति जननी। एकादशी व्रत ये भक्ति को जन्म देने वाला है, भक्ति को बढ़ाने वाला है, वृद्धि कराने वाला है। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करे। जतने मीन्स बहुत गंभीरता से सावधानी से शास्त्रों और वैष्णव गुरु का मार्गदर्शन लेते हुए व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और इसलिए पूरा ब्रह्म पद्म पुराण में वर्णन आता है, जब भी एकादशी के बारे में जानना है तो युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से पूछते हैं हमेशा, हे कृष्ण आप मुझे बताओ ये एकादशी का ग्लोरीज बताओ, लाभ बताओ। तो इस प्रकार से पद्म पुराण में छोटा सा वो कथा आता है आज की एकादशी का, मैं रिपीट करता हूं। तो एक बार ब्रह्मांड पुराण में ये कन्वर्सेशन है कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच में। तो जब ये एकादशी आ ही रहा था तो युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण बताओ इस एकादशी का नाम क्या है और क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, विधि विधान जिसको मैं पालन करूं। तो भगवान कहते हैं कि ये जो मोक्षदा एकादशी है ये मोक्ष देने वाली है, ये जगत से व्यक्ति को बाहर निकालने वाली है, सारे पापों का क्षय करने वाली है। और आज के दिन यदि कोई व्यक्ति विशेष रूप से तुलसी मंजरी को लेकर भगवान को अर्पित करता है, कृष्ण उसको हमेशा के लिए उसके ऋणी हो जाते हैं। कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं केवल एक छोटे से कार्य से, मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी ऑफर करने से। और वो व्यक्ति जो इसका पालन करता है, हजारों प्रकार के जो यज्ञ हैं हाँ उनको करने का उसे लाभ मिलता है। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को एक राजा का वर्णन किया, एक राजा का हिस्ट्री बताया। उन्होंने कहा कि चंपक नामक एक सिटी में शहर में एक राजा थे जिनका नाम था वैखानस। तो ये जो राजा जो पूरे अपने प्रजा से स्नेह रखता था और सारे जो ब्राह्मण हैं उनसे बहुत अधिक प्रसन्न थे, उनके राज्य में सारे जो क्वालिफाइड ब्राह्मण वहां निवास करते थे। तो एक दिन ये जो राजा जब सो रहा था तो उसने रात को अचानक एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में उसने क्या देखा कि उसके जो पिता हैं वो नरक लोक में यातना प्राप्त कर रहे हैं, कष्ट भोगत रहे हैं और अपने बेटे के नाम से चिल्ला रहे हैं मुझे बचाओ। स्वप्न में उसको कह रहे हैं कि आप मुझे इस नारकीय स्थिति से बाहर निकालो। जैसे प्रभुपद कहते हैं कि पुत्र का मतलब है पुत्र नाम नरक त्रायते इति पुत्र। कई प्रकार के नरक है, भागवतम के पंचम स्कंध में वर्णन आया है। तो उसमें से एक नरक का वर्णन आता है, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं उस नरक का नाम है पुत नरक। तो पुत नामक नरक में से जो तार लेता है अपने माता पिता आदि को उसको पुत्र कहा जाता है। और ये कार्य जो नहीं कर पाता पुत्र उस पुत्र की तुलना आचार्य मूत्र से करते हैं कि क्या लाभ ऐसे पुत्र का, जो पुत्र और जो मूत्र है एक ही स्थान से जन्म लेता है। तो जब ये राजा ने स्वप्न देखा बहुत अधिक कष्ट हो रहा था, सुबह उठते उसका राज्य कारोबार करने में रुचि नहीं था, लोगों से बात करने में रुचि नहीं था, अपने संबंधियों से भी अलग प्रकार से व्यवहार वो कर रहा था। फिर वो जाकर ब्राह्मणों से मिलता है, वैष्णवों से, और उनको कहता है कि आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए मुझे ऐसे सिचुएशन में। तो सारे ब्राह्मणों ने कहा कि आपके राज्य के नजदीक एक पर्वत मुनि निवास करते हैं, उनके पास जाओ और उनका जो गाइडेंस है उसको स्वीकार करो, और निश्चित रूप से तुम्हें शांति का लाभ हो सकता है। तो पर्वत मुनि के पास जाते हैं और कृष्ण ये कथा युधिष्ठिर महाराज को बताते हुए कहते कि पर्वत मुनि ने उनको गंभीरता से सुना और कहा कि तुम्हारे पिता क्यों नरक लोक में गए? क्यों? क्योंकि वो बहुत लस्टी थे, कामी थे, जिसके कारण उनको इतनी अधिक यातनाएं भुगतनी पड़ रहे हैं, लेकिन केवल तुम यदि एकादशी व्रत का पालन करते हो और भगवत भजन करते हो तो निश्चित रूप से आपके पिता की जो दयनीय स्थिति है उससे वो मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज बहुत गंभीरता से भगवान कृष्ण से सारे एकादशियों की जो महिमा है उसको श्रवण करते हैं। तो आज की जो वैकुंठ एकादशी है ये श्रीरंगम दक्षिण भारत में जो रामानुज संप्रदाय का प्रमुख स्थान है, जैसे गौड़िया वैष्णव के लिए वृंदावन है, नवद्वीप मायापुर है, उसी प्रकार से श्री संप्रदाय का जो हेडक्वार्टर है वो कौन सा है मुख्यालय? श्री रंगम, जहाँ भगवान कृष्ण रंगनाथ के रूप में निवास करते हैं। तो उस संप्रदाय के एक आचार्य हुए हैं जिनका नाम है नारायण भट्टाधीरी, जिन्होंने ग्रंथ लिखा नारायणीय, उसमें वो वर्णन करते हैं कि वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है श्री वैष्णव के लिए। न गायत्र्या परम मंत्र न मातु पर दैवतम, शास्त्र कहते हैं कि गायत्री से परम श्रेष्ठ मंत्र कोई नहीं है, न मातु पर दैवतम, माता से बढ़कर कोई दैवत नहीं है, न काशी परम तीर्थ, और काशी से श्रेष्ठ तीर्थ कोई नहीं है, न एकादशी समम व्रतम, और एकादशी से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। तो ऐसे ही ये शुक्ल पक्ष में आती है ये जो एकादशी है। तो क्यों इसका महत्व है? क्योंकि आज के दिन बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं शास्त्रों के द्वारा। आज के दिन भगवान ने कौन सा उपदेश दिया था? भगवत गीता का। हमने तो कलयुग मनाया, लेकिन जब एकादशी में दशमी का मिक्सर हो जाता है तो एकादशी का जो व्रत है वो हमें दूसरे दिन पालन करना होता है। अरुणोदय काले तु दशमी यदि दृश्यते न तत्र एकादशी कार्य धर्म कर्मार्थ नाशिनी। वो कहते हैं कि अरुणोदय अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि एकादशी शुरू होती है सूर्योदय से, और एकादशी में यदि कल के दिन की दशमी मिक्स होती है तो व्यक्ति को उस एकादशी का पालन नहीं करना चाहिए, उसको विद्या एकादशी कहा गया है। विद्या मीन्स इम्प्योर, अपवित्र है। तो व्यक्ति को दूसरे दिन जो एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। तो आज के दिन ही भगवान ने भगवद गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, और आज के दिन ही क्या हुआ था? समुद्र मंथन हुआ था। आज समुद्र मंथन में अमृत निकल आया था, कामधेनु प्राप्त हुई थी, उच्च श्रवा जो घोड़ा है, ऐरावत है, कल्प वृक्ष है, अप्सराएं हैं, कौस्तुभ मणि है, पारिजात आदि है। इवन आज का दिन ही महालक्ष्मी का या लक्ष्मी देवी का क्या है? अपीयरेंस डे है। तो इस प्रकार से धन्वंतरी जो अमृत का कलश लेकर आज के दिन ही प्रकट हुए थे, तो जो वैष्णवाज है श्री वैष्णवाज आज के दिन विशेष रूप से रंगनाथ की सेवा पूजा बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। और पंचरात्र में ये वर्णन आता है कि क्यों केवल रंगनाथ के मंदिर से, रंगनाथ के मंदिर में कोई व्यक्ति उत्तरी दिशा में प्रवेश करता है वैकुंठ द्वार से, तो व्यक्ति वैकुंठ धाम जाने का अधिकार को प्राप्त करता है, क्योंकि शास्त्र में वर्णन आता है कि भगवान जब इस सृष्टि का प्रलय होता है उस समय कृष्ण पीपल के पेड़ पर पीपल का जो पत्ता है उसके ऊपर लेटते हैं छोटे से बालक के रूप में, और वो जो पीपल का पत्ता है पानी में फ्लोट करता है, क्या कहेंगे, तैरते हुए जाता है। तो उस समय कृष्ण ब्रह्मा को प्रकट करते हैं, इसलिए उस पत्र के ऊपर लेटने के कारण कृष्ण का एक नाम है वटपत्रशायी, जो वटपत्र में शयन करते हैं वटपत्रशायी। तो जब वो फ्लोट कर रहे थे उसी समय भगवान ने ब्रह्मा को क्रिएट किया और ब्रह्मा जी को आदेश दिया, उनको नॉलेज देकर। भगवान ने कैसे उनको ज्ञान दिया, अपने बांसुरी के द्वारा उनके हृदय में, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भागवत में ब्रह्मा का एक नाम आदि कवि कहा गया है, कि जिनको भगवान ने अपने बांसुरी के द्वारा सारा आध्यात्मिक ज्ञान उनको प्रदान किया और फिर उनको आदेश दिया कि अब सृष्टि करो। लेकिन कुछ समय में ये जो ब्रह्मा है ये भूल गए और अपने आप को ही कर्ता मानने लगे, तो उस समय भगवान के कानों से, कानों का जो मल है, कानों से दो असुर प्रकट हो जाते, मधु और कंटक। साउथ इंडियन लैंग्वेज में उनको लोकर और कंटकन कहा गया है। तो ये दोनों असुर प्रकट होते हैं और दौड़ते हैं किसको मारने के लिए, ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़ते हैं। हाँ क्यों, क्योंकि उनमें ये कर्ता की भावना हो गई थी। तो ये जो दो असुर उनको मारने के लिए दौड़े हैं, तो ब्रह्मा देखा कि अरे मैं, मुझे ये लोग ये दोनों मारने के लिए आ रहे हैं, तो ब्रह्मा ने भगवान को प्रार्थना की, कई सारी स्तुतियां की। तो उस समय भगवान आकर उनकी रक्षा करते हैं। तो ये जो मधु और कैटर है वो कहते कि हे कृष्ण, हे, उस समय तो लॉर्ड विष्णु ही थे, कहा कि हे भगवान आप क्या करो कि आप हमें एक वर प्रदान करो, क्योंकि उनके इस कार्य से भगवान बहुत अधिक प्रसन्न हो गए थे। वो ब्रह्मा को मारने के लिए निकले थे, भगवान बहुत अधिक प्रसन्न हुए थे। तो भगवान ने कहा कि आप मांगो, क्या चाहते हो। इन्होंने कहा हमें केवल दो वर दो। क्या है दो वर, एक तो हमारे साथ एक महीने के लिए आप फाइट करो, कौन सा भक्त मांग सकता है ऐसा वर। उन्होंने कहा एक महीने के लिए फाइट करो और उसके बाद आप अपने चरणों का हमें पूर्ण रूपे न आश्रय प्रदान करो, अपने धाम का आश्रय प्रदान करो। तो वर्णन आता है कि भगवान ने मधु कैटरवादी के साथ युद्ध किया, फाइट किया एक महीना, और अंत समय में भगवान ने फाइनली उनको अपने धाम में स्थान दिया। और क्या स्थान दिया, एक आसुर को शंख और एक को चक्र का स्थान प्रदान किया, जिनको भगवान हमेशा अपने पास धारण करते हैं। नित्य सूरी, नित्य सूरी कहा गया है, जिसको हम कहते हैं नित्य पार्षद। तब ये जो पार्षद, ये दो आसुर भगवान के नित्य पार्षद बन गए हैं, तो इनके हृदय में बाकी जीवों को देखकर बहुत अधिक दया की भावना जागृत हो गई। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण आपने दो तो वर दिए हैं, पहले तो भगवान ने कहा कि आप थैंक यू, सदगति हमें प्राप्त हुई आपके चरणों की, आपके हाथों से हमें आपने मारा है, लेकिन फिर भी ये सारे जीवों को देखकर हमारे हृदय में दया की भावना है, तो आप क्या करिए कि ये जो धनुर्मास है उसकी जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, हाँ उस दिन क्या करिए कि आपका जो जो भी आपके टेंपल्स हैं उसमें जो भी उत्तरी दरवाजा से प्रवेश करेगा उसको ये गुण दे दो कि वो क्या करेगा, मृत्यु के अंत में आपका जो नित्य वैकुंठ धाम है उसको प्राप्त करेगा। आज के दिन वंदना श्रीरंग में जाते तो इतना भीड़ होता है, बाकी किसी गेट से कोई जाता नहीं, सब डिवोटीज उत्तरी दरवाजे से जाते हैं, उत्तरी दरवाजे से जाते हैं, और वो दरवाजा वैकुंठ द्वार कहा गया है। उस द्वार को क्या कहते हैं, वैकुंठ द्वार। और इसी द्वार से जो भक्त है भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के धाम का आश्रय लेने के लिए। तो इसी कारण से ये जो एकादशी है जिसको वैकुंठ एकादशी कहा गया है, शास्त्र कहते हैं तथा पश्यन्ति एतवन्तो नमः शक्ति च ये जना उत्तर द्वार मार्गेण प्रविशन्ति च ये हरे ते वैकुंठ इमं प्राप्य मोक्षं धाम नित्य सूरिवत्। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से उस स्थान में प्रवेश करता है तो शास्त्र कहते कि निश्चित रूप से वो वैकुंठ को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से वैकुंठ एकादशी है और श्री प्रभुपाद जोर देते थे कि जो भक्त है उसको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए जो भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। इसलिए कलयुग में भगवत प्राप्ति करना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी भगवान ने ये सारे व्रत आदि हमें प्रदान किए हैं जिनके द्वारा हम भगवान के प्रति जो हमारी प्रीति है उसको बढ़ा सकते हैं। भगवान जब दुर्योधन के पास गए शांतिदूत बनकर, जब शांतिदूत बनकर गए तो उन्होंने उनके लिए बहुत सारे व्यंजन बनाए थे, लेकिन भगवान ने उनके वहां कुछ ग्रहण नहीं किया। भगवान तो उन्होंने पूछा दुर्योधन ने कि क्यों आप नहीं खा रहे हो मेरे यहाँ, इतना सारा मैंने व्यंजन बनाया है फिर भी तुम वहां क्यों जा रहे हो, विदुर के घर क्यों जा रहे हो। तो भगवान ने उनको कहा, एक श्लोक में कृष्ण कहते हैं शुद्धम भगवत शान्नम शुद्धम भगीरथ जलम शुद्धम विष्णु पद ध्यानम शुद्धम एकादशी व्रतम। तो भगवान कहते हैं कि शुद्धम भगवत शान्नम कि मेरे भक्त के घर का जो भोजन है वो परम पवित्र है, शुद्ध है। जिस प्रकार से गंगा क्या है, परम शुद्ध है, भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान करना भी शुद्ध है, और उसी प्रकार से शुद्धम एकादशी व्रतम, एकादशी व्रत भी शुद्ध है और उसका पालन करने मात्र से व्यक्ति के अंदर तीव्रता से शुद्धि आ जाती है। शास्त्र कहते हैं कि किसी भी कारणवश से यदि व्यक्ति चाहे ईर्ष्यावश द्वेषवश लोभ के कारण एकादशी के दिन खाना भूल जाता है, ग्रहण खाना भूल जाता है, फिर भी कृष्ण इतनी कृपालु हो जाते हैं उस व्यक्ति के ऊपर, एकादशी का कुछ जो लाभ है उसको सुकृति उसे प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये माधव नीति है कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है। तो जो व्यक्ति 8 साल से लेकर 80 साल तक है उसको क्या करना चाहिए, एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए निश्चित रूप से, और एकादशी के व्रत का पालन करने से व्यक्ति तीव्रता से शुद्धि प्राप्त करता है। और एकादशी के दिन व्यक्ति को अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, ग्रेन्स, क्योंकि उसमें पाप पुरुष प्रकट, पाप पुरुष का निवास है। इसी कारण से व्यक्ति को ये ग्रेन्स आदि को छोड़कर बाकी चीजों को ग्रहण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी बहुत जोर देते थे, चैतन्य महाप्रभु छोटे से निमाई पंडित थे, छोटे से बच्चे थे, निमाई पंडित ने देखा कि उनकी माँ एकादशी का व्रत पालन नहीं कर रही है, अभी छोटे से बच्चे को क्या पता चलेगा। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं एक दिन माता पदे करिया प्रणाम प्रभु कहे माता मोरे देह एकदान। तो एक दिन निमाई पंडित अपने माँ के पास जाते हैं और उनके चरणों में नमस्कार करते हुए कहते कि हे माँ मुझे आप क्या करो, एक चीज दान में दे दो। अभी सच्ची माता सोचने लगी कि क्या दान मांगा एक बच्चा। माता बले ताई भी बचा तुम ही मांगी बे प्रभु कहे एकादशी ते अन्न ना खाई बे। उन्होंने कहा, माँ ने कहा बेटा ताहे देवो जा तुम्हें मांगी वे, मैं वो चीज दे दूंगा जो तुम मांगोगे, कुछ भी डिमांड करो। तो ये क्या मांग रहे थे, एकादशी पे अन्न न खाई वे, एकादशी में अन्न मत खाओ, एकादशी के व्रत का पालन करो। सची कहे ना खाई भालई कहिला सही है ते एकादशी करे ते लागिला। उसी दिन से सची माता ने एकादशी का जो व्रत है उपवास है उसको स्वीकार करना शुरू किया। जीव गोस्वामी को उद्धृत करते हुए श्रील प्रभुपाद उस तात्पर्य में कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन ग्रहण खाता है वो अपने माता पिता भाई आदि का हत्यारा होता है, मर्डर जीवन गोस्वामी ने कहा। तो इस प्रकार से एकादशाम दिने योऽन्नं भुक्तेन पापं भुनक्ति यह लोकेच चांडालो मृत पापमोति दुर्गति। जो व्यक्ति एकादशी के दिन में अन्न को खा रहा है, ग्रहण को पाप खा रहा है, इसी के जन्म में वो चांडाल के भांति है, देवता गण उसको चांडाल की तरह देखते दूर से। अब मृत पापमोति दुर्गति, अब मरने के बाद भी सदगति को नहीं प्राप्त होगा, दुर्गति को प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसलिए जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु थे तो वहां तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, सारे भक्तों को रोज खाना होता है, लगभग लोग उनके पास क्वेश्चन उठा, क्योंकि जगन्नाथपुरी में कोई एकादशी का पालन नहीं करता है। वहां तो 365 दिन राइस जगन्नाथ का भात खाया जाता है, एकादशी को वहां बांध के रखा हुआ है छोटे से टेंपल में, लॉक कर देते हैं उसको हमेशा। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां थे तो उस समय उनके सारे भक्त जब एकादशी आए तो भक्तों को प्रश्न उठा, शास्त्र कहते हैं प्राप्ति मात्र ने भोक्तव्य, मतलब जैसे कृष्ण प्रसाद दिखाई दिया तुरंत व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि गुरु और कृष्ण को या प्रसाद को डिले नहीं करना चाहिए, तुरंत सेवन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो भक्त लोग गए कि क्या करें एकादशी के दिन, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जगन्नाथ का प्रसाद का अनादर नहीं करो, हमें उसको ग्रहण नहीं करना है, बल्कि उसकी स्तुति करो और दूसरे दिन उसको खाओ। तो भक्तों ने पूरी रात जागरण किया, हरिनाम संकीर्तन किया और जगन्नाथ का और उनके प्रसाद का गुणगान गाया। प्रेम व्रत में जगदानंद पंडित ने एक चैप्टर ने लिखा है इसके ऊपर, एकादशी का जो प्रसादन है। तो फिर दूसरे दिन सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु के संग में क्या करते हैं, उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। श्रील प्रभुपाद को जब पूछा गया, प्रभुपाद ने कहा आप महाप्रसाद जो होता है उसको ग्रहण मत करो, उस चाहे तो रखो दूसरे दिन खाओ या फिर उन लोगों को बांटो जो लोग एकादशी को पालन नहीं करते हैं, बल्कि महाप्रसाद उस दिन वो व्यक्ति खाएंगे तो भी वो प्रभावशाली है, उसको ग्रहण करने मात्र से हाँ वो लोग प्यूरिफाई हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। प्रभुपाद जब अंतिम समय में ऋषिकेश गए थे अपने हेल्थ के सुधार के लिए दो चार भक्तों के साथ, तो ऋषिकेश में गंगा के बीच में गए, नाव में घूम रहे थे, जल आदि लिया पिया। फिर उस दिन एकादशी थी तो जब प्रसाद सर्व किया तो किसी भक्त ने उस प्रसाद में मटर डाल दिया था और सबने खा लिया, तो पता नहीं था किसी को एकादशी है। हम उनके डिसाइपल्स पर प्रभुपाद निर्भर रहते थे ना, आज एकादशी है तो मटर वगैरह खा लिया और बाद में पता चला प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद ने उन्होंने कहा आप सब मूर्ख हो, बहुत डांटा प्रभुपाद ने उस चीज के लिए। तो फिर हरिशौरी प्रभु ने पूछा कि आप क्या करना चाहिए, प्रभुपाद ने कहा फास्ट फॉर 3 डेज। सारे लोग डर गए। तो प्रभुपाद ने कहा कि अभी टूटा है हमारा तो, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट वे फास्ट करना चाहिए। जैसे एक बार अभी रिसेंटली अमेरिका में क्या हुआ था, एक टेंपल में राधानाथ महाराज लेक्चर देने गए, बहुत सारे भक्त आ गए थे, मतलब 600 डिवोटीज हो गए, और उस दिन एकादशी था और मंदिर में जितनी भी चीजें थी, मंदिर बहुत दूर था सिटी से, मंदिर में जितने भी एकादशी का सामान था उससे पूरा उन्होंने खिचड़ी बना दिया था, बड़ा सा पॉट हेड कुक थे वहां के, वो बना दिया उन्होंने। तो हेड कुक ने कहा, उनका जो सेवक कुक था दूसरा असिस्टेंट, उसको कहा कि तुम क्या करो, मैं जरा तुलसी पत्ते लेके आता हूँ, इस खिचड़ी को हिलाते रहो। अभी असिस्टेंट को लगा कि उसने देखा पॉट को, अरे कलरफुल नहीं लग रहा है, उसको लगा कि कलरफुल होना चाहिए, तो फ्रिज में गया, फ्रिज को खोला, उसमें सिर्फ पैकेट्स मटर के थे, सारे पैकेट्स मटर में डाल दिए उस खिचड़ी में, एकादशी खिचड़ी में, और हिलाते रहा, ढक्कन लगा दिया, और बाद में वो हेड कुक जो थे वो आए डिवोटी, उन्होंने देखा कि ये जो असिस्टेंट है पागल है, इसने क्या किया है टेम्पल में, बाकी कुछ भी चीज नहीं बची थी खाने के लिए, और भक्तों को शायद एक दो दिन कुछ तो फास्टिंग था। तो फिर वो बेचारा रोने लगा हेड कुक, और उन्होंने सोचा क्या करे अभी, किसके पास जाए, अथॉरिटीज के पास जाऊंगा तो उनसे बहुत डांट मिलेगी। तो वो राधा राम महाराज के पास गए, राधा राम महाराज कहते आई डोंट हैव एनी आंसर, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, तुम तुम्हारे अथॉरिटीज के पास जाओ। तो राधा राम महाराज कह रहे थे कि उस दिन क्या किया, फिर वो अभी बांटना ही पड़ेगा, कुछ और नहीं खाने के लिए, 600 भक्त जो बहुत भूखे थे, तो उसी खिचड़ी को लिया, सबके पत्तल में डाला जो बहुत हॉट गरम था, और फिर एक साउंड सिस्टम माइक ले लिया, उसमें कहा कि आप खाने से पहले जो भी मटर है वो निकाल के साइड में रखिए। तो वो कह रहे थे मैं वहां पर्सनली था, इतने सारे भक्त अपने प्लेट में से मटर निकाल के साइड में रख रहे थे और वो खा रहे थे। तो उसको कहते हैं इसको अचिंत्य भेदाभेद कि एकादशी व्रत हुआ या फिर टूटा। तो दूसरा भक्त कहता है उन्होंने क्या किया, जितने भी मटर निकाले हुए थे उसको लिया और दूसरे दिन उसका सब्जी बना लिया। तो शास्त्र कहते हैं कि जो ग्रेन्स हैं हम व्यक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहिए, और एकादशी को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि मैं बीमार हो, हम कुछ ना कुछ बहाने बनाकर ये नहीं करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। यदि आप बीमार हो या किसी कारणवश आपको ग्रहण लेना ही पड़े तो आपको गुरु का परमिशन लेना आवश्यक है, शास्त्र कहते हैं। और इस एकादशियों में कुछ ब्रेक भी हो जाता है पूरे साल के, तो शास्त्र कहते हैं कौन सी एकादशी है जिसको पालन करने से पूरा हो सकता है, निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी जैसे हाँ, ये कभी एकादशी नहीं करते थे भीम, क्योंकि उनका नाम वृकोदरा है, हाँ उनका जठरा भी बहुत पावरफुल है, बहुत भूख लगता है उनको, रह नहीं सकते, अति भोजी हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या करे, व्यास ने कहा देखो तुम्हारी पत्नी द्रौपदी भी उपवास रखती है, सारे भाई भी रखते, तुम्हें कहे तुम इतने सीनियर बड़े हो तुम्हें रखना चाहिए, कहते नहीं नहीं दे सकता खाने का उसके बिना। तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए एक एक उपाय है कि जो ये सारी एकादशी आती है उनमें से ये जो निर्जला एकादशी है उस व्रत का आप यदि पालन करोगे तो तुम निश्चित रूप से सारे जो व्रत है उसका लाभ तुम्हें प्राप्त हो सकता है। तो शास्त्र कहते कि 8 चीजों से जो एकादशी है वो ब्रेक नहीं होती, वो 8 चीजें क्या है, हस्ते तान्य व्रताग्नि आपमूलं फलं पयः हवेर ब्रह्मण काम्याशो गुरोर वचनम औषधम। जल पीने से एकादशी ब्रेक नहीं होता, रूट क्या कहेंगे रूट को, जड़ कंदमूल आदि है, फ्रूट्स खाने से, मिल्क, और ब्राह्मण की तुष्टि के लिए कुछ कार्य करना पड़े हमें तो उससे भी ब्रेक नहीं होता, और गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए आपको जो भी करना पड़े तो उससे भी ब्रेक नहीं होता, और मेडिसिन लेने से ब्रेक नहीं होता, और घी शास्त्र कहते हैं कि 8 चीजों से ब्रेक नहीं होता। तो श्रील प्रभुपाद इस पे जोर दिया करते थे कि हमें एकादशी का पालन करना चाहिए, प्रभुपाद गंभीरता से पालन करते थे, और प्रभुपाद कहा करते थे कि एकादशी का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति एकादशी है तो कहेगा कि मैं सेवा नहीं करूंगा, केवल घड़ी को देखते रहूंगा कि घड़ी में पारण का टाइम कब होने वाला है। निर्जला एकादशी के समय याद आता है, सब लोग घड़ी को ज्यादा देखते पारण का समय कब आएगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि एकादशी के दिन फिस्ट बनाओ, प्रसाद ग्रहण करो, लेकिन कृष्ण की सेवा अधिक से अधिक करो, क्योंकि एकादशी का मतलब ही है मोर हियरिंग एंड चैंटिंग। उस दिन व्यक्ति को अपने सारे भौतिक काम काज कम कर देने चाहिए, इसलिए उस दिन कपड़े धोना, हेड शेव करना, बहुत सारे जो एक्टिविटीज है डिवोटीज बंद करते हैं, और उस दिन अधिक से अधिक अपना जो समय है हाँ श्रवण कीर्तन में लगाते हैं। इसलिए आचार्यगण कहते हैं एकादशी ये फास्टिंग फॉर बॉडी है, शरीर के लिए उपवास है, लेकिन फास्टिंग फॉर सोल, आत्मा के लिए क्या एकादशी फिस्ट है। तो इसलिए एकादशी के दिन अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए, भगवत सेवा का प्रणाम, भगवत सेवा को अधिक से अधिक करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज मोक्षदा एकादशी का हम लाभ उठा सकते हैं, हम इसको पालन करके और अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन करके। हरे कृष्णा। वैकुंठ एकादशी महामहोत्सव की, श्रीमद् प्रभुपाद की। गौर प्रेम।